Hare Krishna, everyone. Thank you so much to Tapan Mishra Prabhu. He is my good friend, for his kind introduction.
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तपस प्रभु जी जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं मेरी भूमिका देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ.
I'm very happy to be here with all of you, Ramachandra Sundar Prabhu, Vasanta Prabhu, of course Tapan Mishra Prabhu, Braj Prakash Prabhu, and I'm sure there are many senior Vaishnavas on the call, and I'm very honored and blessed and very happy to be with all of you.
तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आप सभी के साथ में यहाँ पर, श्रीमान रामचंद्र सुंदर प्रभु, वसंत प्रभु, श्रीमान तमश प्रभु जी और जो वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबके साथ में.
Today I am speaking to you from Bhaktivedanta Manor in London, one of Srila Prabhupada's most favorite places in the whole world.
और आज मैं अभी इस समय भक्तिवेदांत मैनर यहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ जो कि श्री प्रभुपाद जी का एक बहुत ही उनको प्रिय स्थान था ये पूरे विश्व में.
Srila Prabhupada once said that when the sun is shining, then there is no place better than Bhaktivedanta Manor.
प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार कह रहे थे वो कि जब सूर्य पूर्ण रूप से उदय होता है तो भक्ति वेदांत मैनर से अच्छा कोई स्थान नहीं है.
But today you can see the sun is shining and I'm very happy to be here with you.
और प्रभु जी दिखा रहे हैं आज अपने, आप देख सकते हैं कि उनके कमरे में बहुत अच्छी सूर्य की रोशनी आ रही है. आज सूर्य प्रकट हुए हैं और ये बहुत अच्छा स्थान है जहाँ से प्रभु जी हमको सुना रहे हैं.
So today we are in a very wonderful month of Purushottam and we have decided for this Friday and next Friday we will discuss chapter 15 Purushottam Yoga.
तो ये बहुत ही अच्छा महीना है, पावन महीना है पुरुषोत्तम महीना और इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज के शुक्रवार और आने वाले शुक्रवार को हम लोग पुरुषोत्तम योग भगवत गीता से अध्ययन करेंगे.
So with your permission, I will present one PowerPoint. If at any time you have any question, you can put on the chat, and then we will discuss like that.
तो अभी मैं यहाँ पर एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. अगर कोई प्रश्न होगी, जिज्ञासा होगी तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम लोग उसको चर्चा कर सकते हैं.
ओम ज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेश तारिणे. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता इज परहैप्स द मोस्ट इनक्रेडिबल बुक इन द एंटायर यूनिवर्स.
तो भगवद गीता पूरे ब्रह्मांड में सबसे अचूक शास्त्र है. ये
One Srila Prabhupada was translating in the middle of the night and at 1 o'clock in the morning he began ringing his bell very very loud.
एक बार श्री प्रभुपाद जी रात्रि में अनुवाद कर रहे थे और लगभग 1 बजे रात्रि में उन्होंने बहुत तेज से घंटी को बजाया.
So his servant came running in, he was half asleep, he came running in and he said, Srila Prabhupada, what can I do for you?
तो श्री प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत सेवक वहां पर दौड़ करके आए, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
तो प्रभुपाद told him, come, sit here.
प्रभुपाद जी कहा कि आओ यहाँ पर आकर के बैठो.
And then Srila Prabhupada gave him the Bhagavad Gita.
और तब श्री प्रभुपाद जी ने उनको भगवत गीता पुस्तक दी.
And he said, if you read this one book, you will become perfect.
और प्रभुपाद जी कहा कि अगर आप सिर्फ ये केवल एक पुस्तक का अध्ययन कर लोगे तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा.
So the devotee took the book and he was amazed and he was thinking.
तो वो भक्त ने उस पुस्तक को लिया और बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो गए और वो सोच रहे थे.
And then he looked at Prabhupada and said, "Is there anything I can do for you? Anything practical help you need? Any duty I should do for you?"
और तब वो पूछे प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? कुछ आपने घंटी बजाई तो कुछ मेरे लिए सेवा है तो बताइए मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ.
Prabhupad said, "No, no, it's okay. I just wanted to tell you this. Now you can go back to sleep."
और तब प्रभुपाद जी कहा कि नहीं नहीं बस सब ठीक है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता था, अब जाके आप सो सकते हैं.
So Srila Prabhupada wonderfully gifted us the Bhagavad Gita and we can read this every single day.
तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही कृपा से ये हमको भगवत गीता अर्पित किए हैं और हम लोग इसको प्रतिदिन इसका अध्ययन कर सकते हैं.
Lord Shiva says to Parvati, Maline Moshanam Pumsham Jalashnanam Dine Dine Gita Shakrit Bhashishnanam Samsara Malanashanam. He is explaining that just as you take bath with water every day to clean the body, every day if one takes bath in the words of the Bhagavad Gita, one will cleanse the mind and consciousness.
तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती माँ से कि जिस प्रकार से रोज लोग स्नान करते हैं अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए प्रतिदिन, उसी प्रकार से अगर प्रतिदिन कोई भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो उनका मन और उनकी चेतना वो शुद्ध हो जाती है.
Today we are reading chapter 15 and this is the yoga of the supreme person. In Sanskrit the word supreme person is Purushottama.
और आज हम सब 15वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसका जो शीर्षक है वो है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम योग.
In the Bhagavad Gita, the Acharyas explain that there are three main sections within the Bhagavad Gita.
तो भगवत गीता में आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि तीन प्रमुख विभाग हैं इसके अंदर.
1 to 6 is considered all about karma yoga. And we can say in modern day language, the yoga of success.
तो 1 से 6 अध्याय जो हैं वो कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं और आधुनिक समाज में अगर हम कहना चाहें आधुनिक भाषा में तो ये सफलता का जो योग है उसको कहा जाता है.
If one wants to understand how to achieve success, how to maximize the abilities that God has given them, how to achieve the maximum amount they can in the world, then all the knowledge is given within these chapters of the Gita.
अगर कोई ये जानना चाहे कि कैसे सफलता प्राप्त की जाए, कैसे सफलता को और बढ़ाया जाए, तो ये सारी जानकारी इस अध्याय में दी हुई है.
In the middle 6 chapters, Krishna talks about bhakti yoga. In modern language, we call the yoga of love.
और बीच के जो मध्य के 6 अध्याय हैं उसको भक्ति योग कहते हैं और आधुनिक भाषा में प्रेम का योग कह सकते हैं.
And the final 6 chapters of the Gita are all about jnana yoga, which we can call the yoga of wisdom.
और अंत के जो 6 अध्याय हैं उनको ज्ञान योग और हम लोग इसको ज्ञान का योग कह सकते हैं.
Now, if you think about all three of these things, success, love, and knowledge or wisdom, there is no one in the world who is looking for anything outside of these three things.
तो अगर हम ध्यान से देखें इनको तो सफलता, प्रेम और जो विद्या या ज्ञान है, तो देखें तो सभी लोग इसके परे और कुछ नहीं चाह रहे हैं.
This is the universal pursuit of every single person in the world that they understand. If I have success, if I have love, and if I have knowledge, then I will achieve happiness in my life.
तो ये सार्वत्रिक विचार है. सभी लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में सफलता हो, प्रेम हो, और ज्ञान या विद्या हो, तो हम तभी हम जीवन में प्रसन्न हो पाएंगे.
But people are looking for success, love, and wisdom in the wrong place, and therefore they are frustrated.
लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते और वो गलत जगह पर ढूंढते हैं सफलता को, प्रेम को और ज्ञान को, इसीलिए वो लोग निराश हैं.
Now, the essence of the Bhagavad Gita is contained within the middle six chapters. The purpose and goal of life is to achieve love for Krishna.
तो जो सार है भगवत गीता का वो मध्य के छह अध्यायों में दिया गया है कि किस प्रकार से जो हमारे जीवन का उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है.
So now one will naturally ask the question that why did the Bhagavad Gita not end at chapter number 12?
तो कोई ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर अगर यही बात है तो फिर 12वें अध्याय में भगवत गीता समाप्त क्यों नहीं हो जाती?
So I want some of you to answer on the chat, why is the last six chapters of the Bhagavad Gita there? If the goal of life is to achieve love for Krishna, why do we even need chapters 13 to 18? Please answer on the chat.
तो प्रभु जी विनती कर रहे हैं कि भक्त लोग अपने उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में कि अगर 12वें अध्याय में ही हमारा ये जो अध्याय सार समाप्त हो जा रहा है तो 13 से 18 अध्याय क्यों फिर दिए गए हैं भगवद गीता में, क्या उसका उद्देश्य है, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं.
Please don't be shy. I want some of you to try to answer the question because this is very important to understand. Purushottam Yoga appears in the 15th chapter. And why are these final six chapters of the Gita even there? Please make some answer.
कृपा करके आप कुछ उत्तर कुछ भक्त दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है क्योंकि पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में है और तब हम लोग उस पर और चर्चा कर पाएंगे.
Shyamal is saying that we have to understand the Lord and how to serve the Lord. But my question to you, Shyamal, is that Krishna says, Bhakti amam abhijanati, that you can only understand me through bhakti. So if Krishna has already given bhakti, why is there need for gyan?
तो उत्तर दिया गया था एक माता जी के द्वारा कि भगवान को समझने के लिए और कैसे भगवान को सेवा करनी है. तो अगर हमें भक्ति मालूम हो गई है, प्रभु जी बताया कि भक्ति हम अभिजानती भगवान कहते हैं, तो हम भक्ति से जान सकते हैं, तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है?
ओके वंडरफुल प्रभु जी, वन माता जी आई थिंक हैज पुट हर हैंड अप, सो मे बी वी कैन अनम्यूट हर और हिम, आई डोंट नो हु इट
इज. यस यस.
Yeah, while we're getting this person on, Braj Prakash Prabhu says, Bhakti is protected by Gyan. Very nice, very nice. And someone else would like to answer on the, we can unmute them.
Mataji, you can unmute yourself.
Hare Krishna, Mataji, yes. What is your answer?
Hare Krishna, thank you all. Yes, Prabhuji, when we have knowledge, we can strengthen our Bhakti. Because this Gyan Yoga chapters are all about the material world and our nature. So it is it's kind of a caution that if we have the knowledge of something which is not good, then we will focus more on bhakti.
Wonderful. Prabhuji, would you like to translate?
So Mataji bataya ki hum gyan ke dwara apni bhakti ko aur drudh kar sakte hain. अगर वो ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति वो और दृढ़ नहीं हो सकती.
So all of you have given wonderful answers. Yashomati Nandan Prabhu is explaining that there will be obstacles in life, there will be difficulties, and we have to learn how to live in this world. Therefore, Krishna gives us the gyan to understand how to live in this world and ultimately how to go beyond this world.
Prabhu, there are some other devotee also raised the hand. Can I?
Yeah, sure. They can speak. No problem.
Yes, Prabhuji. Please go ahead, Prabhu.
Hare Krishna, Prabhuji. So Krishna, not Prabhuji. Not everybody is at the stage of pure Shuddha Bhakti. So for them to elevate to that platform, they need a transitionary phase.
Wonderful, wonderful. Thank you so much. In the Bhagavad Gita, Krishna is giving a yoga ladder. And he's explaining that there is something for everyone and something that will attract and be relevant for every type of spiritual practitioner. Very good. And Vasanta Prabhu says, Gyan mixed with bhakti while indirectly showing Keval bhakti to the Supreme Lord. Thank you so much. Yes. Braj Prakash Prabhu, go ahead. Yes, you Prabhu. Can translate as so, much as you remember.
So Prabhu ji ne bataya ki Viskaran Prabhu ne bataya ki kyunki sab log abhi shuddh bhakti ke astar par nahi hai, isliye gyan ki avashyakta hai, jisse wo apne ko uch avastha mein leke ja sake upar ki avastha mein. और प्रभु कहा कि बहुत सुंदर रूप से ये बताया गया क्योंकि हमारे भगवत गीता में योग की सीढ़ी बताई गई है किस प्रकार से सीढ़ी से हम ऊपर बढ़ सकते हैं.
So these are all very true. Remember, Bhagavad Gita is like a transcendental sandwich.
तो हम लोग ये सभी जो उत्तर थे लगभग सभी उत्तर सही थे तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता जो है वो एक दिव्य सैंडविच के समान है.
There is the filling is the most important, but without the bread, the full taste will not come.
तो सैंडविच के अंदर जो बीच का भाग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके ऊपर नीचे के जो दो ब्रेड होते हैं उसके बिना वो स्वाद नहीं आएगा.
So today we will discover some of the gyan that Krishna speaks about in the 15th chapter.
तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ हम लोग अनुसंधान करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं.
Now I am giving you one acronym for every single chapter, and this acronym will help you to understand all of the major contents within the chapter and the theme of the chapter.
तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से हर एक अध्याय को एक नाम दिया है एक शब्द में, और उसी शब्द के द्वारा उसका विच्छेद करके हम पूरे अध्याय के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो जान सकते हैं.
The acronym for this chapter is HOME because Krishna in the 15th chapter explains that the material world is not our true home, the spiritual world is our true home.
तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में होम बताया गया है, घर जिसका अर्थ होता है. और वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम सब का जो वास्तविक घर है, स्थान, निवास स्थान, वो ये भौतिक जगत नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है.
H stands for home or hotel because in the first 5 verses Krishna will explain that the material world is a hotel but the spiritual world is our true home.
तो पहला जो शब्द है, पहला जो अक्षर है H, उससे उसका अर्थ है होम या होटल, घर या कोई ऐसा सराय, क्योंकि हम सब यहाँ पर किसी अतिथि गृह में यहाँ पर रुके हुए हैं, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है.
O stands for on and on because Krishna explains that while the soul is in ignorance, it reincarnates on and on again and again in the material world in the hotel.
और O से जो शब्द आया है वो ये है कि पुनः पुनः, इसका अर्थ है कि हम लोग पुनः पुनः इस प्रकार के अपने जीवन में कार्य करते जा रहे हैं और पुनः पुनः जन्म लेकर के और मृत्यु इस प्रकार से संसार में ही हम अलग अलग सराय में जाते जा रहे हैं.
M stands for maintainer because then Krishna explains that while the soul is in this material world, Krishna is maintaining all aspects of their life.
और M से जो है वो है पालन करने वाले. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कि जब तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं अतिथि गृह में, भगवान ही सब कुछ सारी सुविधाएं उस पालन हेतु प्रकट कराते हैं.
And E stands for essence of the Gita because in the 5 final verses of this chapter, Krishna summarizes the essence of the Gita in 3 shlokas.
और E से जो है वो गीता का सार, तो आखिरी के जो 4 श्लोक हैं, विशेष रूप से 3 श्लोक हैं, उसमें पूरे गीता का सार भगवान कृष्ण उसमें दर्शाते हैं.
So today we will explore this first 2 aspects of chapter 15, and next week we will explore the final 2 aspects of this chapter.
तो आज हम लोग इसमें से जो दो शुरुआत के जो दो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे, और आने वाले शुक्रवार को जो बाकी दो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे.
And if you please remember, if you have any questions, then please write them in the chat or you can put your hand up.
और स्मरण रखिएगा कि आपको अगर कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप अपने हाथ उठाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं.
One time, one devotee asked Srila Prabhupada, why did Krishna create this material world?
तो एक बार एक भक्त श्री प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि कृष्ण भगवान ने क्यों इस भौतिक जगत का निर्माण किया.
He He said, Prabhupada, there are so many problems, so many difficulties, so many challenges, so many anxieties. Why did Krishna create it?
उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी इतनी समस्या है, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी कठिनाई है इस जगत में, क्यों भगवान ने इसको निर्माण किया?
Prabhupada looked at the devotee and said, because you wanted it.
और प्रभुपाद जी ने उन भक्त की ओर देखा और कहा, क्योंकि आप चाहते थे।
This material world is created by Krishna as an opportunity for the conditioned soul to experience what it is like to try and be God.
तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये एक ऐसा अवसर हम सब बद्ध जीवात्माओं को दिया गया है जिसमें कि हम ये अनुभव कर सकें कि भगवान होने का अर्थ कैसा होता है, भगवान के जैसा होने का अर्थ क्या होता है।
In the spiritual world, Krishna is Purushottam or the supreme enjoyer.
आध्यात्मिक जगत में भगवान वो सर्वोपरि भोक्ता हैं।
But when the living entity desires to become the enjoyer, the Purusha, then Krishna creates the material world so the living entity can try.
और जब जीव जो है, जब वो नियंत्रण या भोग करने की इच्छा प्रकट करते हैं, तब भगवान उनके भोग के लिए ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं।
And so in this first section of the 15th chapter, Krishna will use the analogy of a banyan tree to explain the difference between the spiritual world and the material world.
तो इस अध्याय के पहले भाग में भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष का उदाहरण देते हैं, उसका व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से ये भेद बताने के लिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है।
Now, if you see, this is a banyan tree in India.
तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छी छवि जो हमको यहाँ पे दिख रही है, ये भारतवर्ष के एक वट वृक्ष की छवि है।
In Calcutta, there is one banyan tree, and the roots of the banyan tree spread for over 2 or 3 kilometers.
तो कोलकाता के पास में ये वटवृक्ष है, जिसका कि जो जड़ हैं, जो शाखाएं हैं, वो कम से कम 2-3 kilometers तक वो व्याप्त हैं।
This is one of the most complex trees in the entire creation.
और ये बहुत ही जटिल वृक्ष है पूरे इस सृष्टि में।
In Sanskrit, the word for banyan tree is ashvatha.
तो संस्कृत में इसको अश्वथा कहते हैं।
Tha comes from the word star, which means to stay.
तो जो था शब्द आता है, ये इसका अर्थ है कि रहना, रुके रहना।
Swa means tomorrow.
और स्व का अर्थ होता है कल, आने वाला कल।
एंड अ एज अ प्रीफिक्स मींस नॉट।
और अ चूंकि पहले लगा हुआ है, तो इस सर्ग का अर्थ होता है नहीं।
सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड अश्वथा इज दैट व्हिच विल नॉट बी हियर टुमारो।
तो जो वास्तविक इसका साहित्यिक जो अर्थ है इस शब्द का अश्वथा, कि ऐसी वस्तु जो कल नहीं रहने वाली है।
In other words, that which is temporary.
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो अस्थाई है।
So the material world is temporary. Everything in the world is temporary. The relationships are temporary. The body is temporary. Our fortunes are temporary. Our abilities are temporary. Everything is temporary.
तो भौतिक जगत में सब कुछ, भौतिक जगत में सब कुछ जो है वो अस्थाई है। हमारा शरीर के साथ में संबंध, हमारा शरीर, हमारा भाग्य, ये सब कुछ अस्थाई है।
And ultimately the whole material world is temporary because at one point Krishna explains bhutva bhutva praliyate, that the material world is created and destroyed again and again.
और अंततः ये पूरा भौतिक जगत ही अस्थाई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भूत्वा भूत्वा प्रलियते, ये बार बार इसको सृष्टि निर्माण करते हैं और इसको नाश करते हैं।
So what Krishna explains in the first verse of the 15th chapter, he says there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas.
तो यहाँ पर पहले ही श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो अश्वत्थ का जो वृक्ष है, अक्षय वृक्ष जो है, इसकी जो शाखा, इसके जो जड़ है वो ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, जिसमें कि उसकी जो पत्तियां हैं वो सब वैदिक हिम्स हैं, वो वैदिक श्लोक हैं वो, और जो इसको जानते हैं इस वृक्ष को वो वैदिक शास्त्रों को जानने वाले हैं.
So here Krishna explains that the real form of the tree is the spiritual world. He explains in the spiritual world, Natad bhashayate shuryo nashashankuna pavaka yadgatva nanivartante tadhama paramamama. Krishna explains the spiritual world is the place where every step is a dance, every word is a song, the place where there is no need for any sun or moon, and that place where once you go, you never come back again to this material world.
और वो बताते हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में वहां पर सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, वो स्वयं प्रकाशित हैं, और वहां पर जो बोलते हैं वो गीत के समान है, चलना वो नृत्य करने के समान है, और वहां पर कोई जाते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आते.
But now the problem is, if someone in the material world, in the spiritual world, develops a material desire, then Krishna has to make the material world.
लेकिन समस्या यह है कि जब कोई आध्यात्मिक जगत में है और उनके अंदर भौतिक इच्छा आ जाती है, तो इसलिए भगवान को भौतिक सृष्टि का निर्माण करना होता है.
So this desire is like like a water or like a river which creates a reflection.
तो ये जो इच्छाएं हैं ये एक नदी के समान, जल के जो जलाशय हैं उनके समान हैं, जो कि उसमें प्रतिबिंब उसको बनाते हैं.
If there is a tree and then there is some water, then you will be see a reflection in the water.
जैसे कोई वृक्ष हो और वो नदी के तट पर हो, तो उस वृक्ष का जो बड़ा भाग ऊपर होता है उसको हम नदी में उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं.
So the reflection of the imperishable banyan tree in the spiritual world is the temporary banyan tree in the material world.
तो वो जो स्थाई वट वृक्ष आध्यात्मिक जगत में जो चर्चा की जा रही है, उसी का प्रतिबिंब जो अस्थाई है उसको हम भौतिक जगत में देखते हैं.
In the spiritual world, the roots are down, but in the material world, reflection, the roots are up.
तो आध्यात्मिक जगत में जो जड़ हैं उस वृक्ष के वो नीचे हैं, जमीन के नीचे, लेकिन उसके प्रतिबिंब में हम देखते हैं भौतिक जगत में वो ऊपर हैं.
In the spiritual world, the fruits are at the top, but in the material world, the fruits are at the bottom.
आध्यात्मिक जगत में जो फल हैं वो ऊपर हैं वृक्ष के, लेकिन भौतिक जगत में वो नीचे दिखते हैं हमको.
So this is very, very powerful analogy. If you think deeply about it, you will understand many things about this material world.
तो ये बहुत ही गंभीर, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है. जब हम इसको गंभीरता से प्रयास करेंगे, सोचेंगे, तो काफी चीजें हमें इस भौतिक जगत की समझ में आएंगी.
Now, if you look at the screen, then you will begin to see some of the aspects that Krishna explains about the material world.
तो अभी अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे देखें जहां जहां पर आप हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भौतिक जो जगत में चीजें हैं उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं.
So now you see, this is the tree of the material world, which is very, very complex and which is very, very entangling.
तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो वृक्ष है ये बहुत ही जटिल है भौतिक जगत में, और बहुत ही ये उलझी हुई है.
Once you come into this material world, which is like a banyan tree, it's like being in a dark forest, and very, very easily you can become lost.
तो जब कोई इस प्रकार के इस बड़े वृक्ष के संपर्क में आते हैं, इस प्रकार से है ये भौतिक जगत में, जैसे कि बिल्कुल अंधकार, जैसे कोई वन हो और उसमें पूर्ण रूप से खो गए हों.
And therefore, Chaitanya Charitamrita says, Brahmande, Brahmite, for many, many lifetimes we have been going in the material world, not knowing who we are or what the purpose of life is.
और इसलिए चैतन्य चरितमृत में बताया गया कि कई कई जन्मों से, अनगिनत जन्मों से, अनादि जन्मों से हम लोग इस प्रकार के अंधकार में, भौतिक जगत में घूमते जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, ये हमें ज्ञात नहीं है, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं।
And as we are wandering in the material world, what are we looking for?
और जब हम भ्रमण कर रहे हैं भौतिक जगत में तो क्या हम देख, क्या खोज रहे हैं हम?
We are looking for happiness.
हम सभी प्रसन्नता खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं।
And how are people looking for happiness? Through dharma, artha, kama, and then ultimately some people look for moksha.
और कैसे हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ये सुख? धर्म के द्वारा, काम के द्वारा, अर्थ के द्वारा, और बहुत कम लोग हैं जो मोक्ष के द्वारा।
So these are the fruits that everyone is looking for in the material world, the fruits of sense gratification.
तो ये हैं वो फल जो भौतिक जगत में सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं इस वृक्ष के, जो कि उनकी इंद्रियों को तृप्त कर सके।
But remember, because we are in the reflection, the fruits are right at the bottom, low down.
लेकिन हम स्मरण रखें कि हम लोग चूंकि उस ये प्रतिबिंब है, तो ये जो फल है ये बहुत नीचे है।
And therefore, the more that you seek sense gratification in the material world, the further you are away from the reality of the spiritual world.
और इसीलिए हम जितना इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख ढूंढने का प्रयास करता है, उतने ही हम उस वास्तविक जो आध्यात्मिक जगत में जो फल है उससे दूर होते जाते हैं।
So what Krishna is trying to do is help us to understand that this material world is not where we are meant to be.
तो भगवान श्री कृष्ण क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत वो स्थान नहीं है जहां पर हमें होना चाहिए।
Sometimes we live here as though we are going to be here forever.
और कभी-कभी हम देखते हैं लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि हम लोग यहां पर स्थायी रूप से रहने वाले हैं।
But the reality is we are only here for a temporary time and we have a big purpose, a big mission, a big achievement to make while we are in this world. Which is to understand who we are and who Krishna is.
तो हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर बहुत कम समय के लिए हैं, लेकिन बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा उपलब्धि हमें प्राप्त करनी है जब हम इस संसार में यहाँ पर हैं।
और वो क्या है?
कि ये समझना कि मैं कौन हूँ और कहाँ पे हमें जाना है।
When Yamaraj asks Yudhisthira, "What is the most amazing thing in the world?" then Yudhisthira replied, "Ahani ahani bhutani gachanti hayamalayam sheshasta varamichanti kimascharyam ataparam." Yudhisthira said, "The most amazing thing, ascharyam, is that every single day people are dying, but I think I will live here forever." किम आश्चर्य अताम वैन बी मोर अमेजिंग देन दिस।
तो विष्णु महाराज से पूछा गया ये प्रश्न कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि लोग आसपास के लोग वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तो यहीं पर रहूंगा और इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है।
सो कृष्णा वॉन्ट्स टू हेल्प अस टू बिगिन सीइंग द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे।
So, भगवान श्री कृष्ण वो हमें सहायता करते हैं इस संसार को दूसरी तरफ से देखने के लिए।
You see, sometimes when we look at the material world, we think this is actually a very, very nice place.
तो कभी कभी हमको भौतिक जगत जब हम देखते हैं तो लगता है कि तो बहुत ही अच्छा स्थान है।
Sometimes the sun is shining, the birds are flying, the bees are buzzing, you have everything you need, there are no problems, and you think material world? No problem. It's a nice place.
तो कभी हम देखते हैं कि सूर्य पूर्व से उगे हुए हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, बहुत सुंदर दृश्य दिखता है, तुमको लगता है कि कोई बात नहीं, समस्या कोई समस्या नहीं है, ये अच्छा स्थान रहने के लिए।
Just like when you look at this picture on the screen, this looks like a very, very beautiful place.
जैसे अभी जो दृश्य हमें दिख रहा है अपने फोन या डिवाइस के स्क्रीन पर, वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, हृदय को बहुत ही वो मनोरम लग रहा है।
But if you would zoom in and you would go into the grass very, very close, then you will see that actually, if you go close, it's like a jungle. many animals, insects, they're all killing each other and they're trying to survive.
लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इसको बिल्कुल पास में आकर के बड़ा करके देखना चाहेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ तो बड़े बड़े जंगल हैं, जो वृक्ष दिख रहे हैं उसके अंदर कई पशु या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एक दूसरे को मार करके खाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखेगा.
So through the Bhagavad Gita, Krishna helps us to see the world in a different way, like an X-ray machine. You can see much deeper.
तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हम सबको जैसे एक्सरे होती है, वैसे ही हमको गंभीर रूप से उसका पूरा वास्तविक स्वरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं.
We may think the world is a nice place, but let me show you some facts about the material world.
तो हम समझते हैं कि ये जगत बहुत अच्छा स्थान है रहने के लिए, लेकिन प्रभु जी कह रहे कि मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊंगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि वास्तविक तथ्य क्या है.
For those of you who are on the call, if you have food in your fridge and clothes on your back and a house to live in, you are richer than 75% of people in the world. That means 75% of people in this world don't even have food, clothes and a roof over their head. Roti, kapra, makan, they don't have.
So ye bahut hi ye kadwa sach bata rahe hain Prabhu yahan par. कि अगर जो लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं वो देखें, जिनके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए कुछ रोटियां, कुछ मतलब खाने का भोजन और पहनने के लिए वस्त्र अगर हैं, तो वो 75% लोगों से ज्यादा खुशहाल हैं, क्योंकि सत्य ये है कि 75% लोगों को इसमें से कोई एक चीज कम से कम नहीं मिलती है.
इफ यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, इफ यू हैव सम बैंक अकाउंट, सम एक्स्ट्रा सेविंग्स, you are in the 8% top wealthy people in the world. Over 90% of people have no money saved.
Agar aapke paas kuch paise bache hue hain aur aapke bank mein jama hain to aap un 8% logon mein se hain, dhani logon mein se, kyunki 90% logon ke paas mein to paise bachte nahi hain.
If you have never been in a battle or, you know, some kind of war time, or you've never been tortured, or you've never had any problem like starvation, you are luckier than 500 million people who are alive and suffering all these things right now.
तो अगर कोई इसमें से ऐसे लोग हैं जो कभी युद्ध स्थल में या पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया हो, कभी भूख से नहीं तड़पे हो, तो वो उन 5 करोड़ लोग से अच्छे हैं जो इस प्रकार के लोगों में लिखे हैं.
If you know how to read, if you can read on a screen or read a book, you are more fortunate than 3 billion people in the world who never had the opportunity to go to school or learn about how to even read and write.
और अगर आप पढ़ सकते हैं, अभी जो कुछ आ रहा है उसको देख पा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप 300 करोड़ लोग से ज्यादा आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे लोग को कभी भी विद्यालय में जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता.
So now let me ask you, is this world a nice place?
तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या ये जगत एक अच्छा स्थान है रहने के लिए.
Now you may say, but I have all of these things. I have money, I have food, I know how to read and write. I have no problems of like wars or anything. So I am happy.
तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे पास तो ये सब कुछ है. मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है. मैं कभी भूख से नहीं तड़पा हूँ. मैंने पढ़ाई भी की है. तो मेरे पास तो सब कुछ है.
But then Krishna will say, "Janma mrityu jara vyadi dukha doshanu darshanam." Even if you don't have any of these problems, you will grow old. You will become diseased. You will suffer from so many other difficulties, and then eventually you will die. So everyone in the material world loses at the end.
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक, अगर इसमें से कोई समस्या नहीं है तो सभी लोग को ये समस्या है, जो 4 वास्तविक समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. आप बड़े हो रहे हैं, वृद्धावस्था आएगी और सबको एक दिन मरना है.
We must be 100% convinced that this world is a place of misery, dukhalayam, ashashvatam.
और हम सबको ये जानते हुए 100% इस पर विश्वास करना चाहिए कि ये स्थान दुखालयम है और अश्वाशतम है.
if you still have some hope for happiness in this world, then Krishna will give you another chance to come back to this miserable place.
अगर फिर भी कोई आशा है हमको कि नहीं यहाँ पर ये स्थान ये सुखदायक स्थान है तो भगवान हमको और अवसर प्रदान करेंगे यहीं पर रहने के लिए.
But does that mean a devotee becomes depressed about everything because the material world is miserable?
तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि जो भक्त लोग हैं वो बिल्कुल निराश होकर के रहें कि अरे ये स्थान तो बहुत ही दुखमय स्थान है, दुखालयम है?
No, they don't, because they know that there is a place where they can experience full happiness, full satisfaction, full love, and that's the spiritual world.
तो नहीं, क्योंकि उनको ज्ञात है कि एक ऐसा स्थान है आध्यात्मिक जगत जहां पर पूर्ण रूप से आनंद है, पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञानमय है वो स्थान.
So what the Shastra is doing is encouraging us to first develop detachment from the material world, then we will be able to become attached to the spiritual world.
तो शास्त्र चक्षु हमें क्या दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमको त्याग की भावना इस भौतिक जगत से किस प्रकार से अनासक्त हुआ जाए और तब फिर हम आध्यात्मिक जगत की ओर आसक्त हो सकते हैं. यस प्रभु.
Krishna explains in the Bhagavad Gita, Ashanga Shastrena Dridaina Chitva, that one must cut down this reflection of the banyan tree of the material world with the weapon of detachment.
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो वट वृक्ष का जो हमारा आसक्ति है इसको काटना है, शाखाओं को किससे काटना है? इस त्याग के तलवार से.
In Shastra, sometimes we find different statements which describe the same thing, but in different ways.
तो शास्त्रों में हम देखते हैं यही वाक्य हमें अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीकों से मिलते हैं.
For example, sometimes the material world is described in Shastra as dukhalayam ashashvatam, a place of suffering.
जैसे उदाहरण के स्वरूप देखा जाए तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं ऐसे वर्णन किया गया है कि भौतिक जगत वो दुखालयम अशाश्वतम है.
But later on, one of our great saints, Prabodhananda Saraswati, he says, Vishvam purna sukhayate, the world is full of happiness for me.
तो बाद में एक बहुत ही महान आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती वो कहते हैं कि ये तो बहुत सुखमय स्थान है मेरे लिए.
Sometimes family life is described in the Shastra, hitvatmapatam grihamandakupam. Family life is described like a deep, dark, cold well.
तो कभी कभी हम देखते हैं शास्त्र में बताया जाता है कि किस प्रकार से जो पारिवारिक जीवन है वो एक अंधकार बहुत ही गहरा कुएं के समान है.
However, family life is also described in Shastra as Vyasanarnavam Atyeti. It's described as a very wonderful, safe boat which will help one cross the material world.
और दूसरी खबर बताते हैं कि ये जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही एक अच्छा सुरक्षित नाव है जो हमको आसानी के साथ हमारे गंतव्य स्थान पर लेके जा सकता है.
I give you another example. Sometimes the material body is described in the Shastra, Ashan api kleshada ashadeha. The word given for the material body is kleshada, or literally that thing which gives you suffering.
तो भौतिक शरीर जो हमारा उसको बता रहे हैं कि वो क्लेश देने वाले हैं, वो हमको कष्ट देने वाले हैं.
But later on in Shastra, the material body is described by Prahlad Maharaj, Durlabham Manusham Janma Tad Apyadruvam Arthadam. He says the material body is Arthada, that thing which gives you great Artha or benefit.
और दूसरी जगह पर हम देखते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये अर्थ प्रदान कर सकते हैं, ये हमारे जो शरीर है वो हमें कुछ अर्थमय अर्थवन मूल्यवान वस्तु प्रदान कर सकते हैं.
So someone may say, why does the Shastra give such different vision of the same thing? It seems like a contradiction.
तो कोई कह सकता है कि शास्त्र हमें ऐसे ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण क्यों देते हैं, लगता है कि विरोधाभास है ये.
But there is no contradiction.
लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है.
Because it depends whether you are trying to enjoy or whether you are trying to utilize in Krishna's service.
क्योंकि ये निर्भर करता है हमारी चेतना के ऊपर कि क्या हम इससे आनंद का भोग करना चाह रहे हैं या हम इसको भगवान की सेवा में इसको युक्त कर रहे हैं.
If you try to enjoy the material world in a material way, then it will be a place of suffering for you.
तो अगर हम भौतिक जगत में भौतिक इस वस्तुओं को हम अपने आनंद की तृप्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं तभी हमारे लिए कष्टमय स्थान होगा.
But if you use material world and material everything you have around you, you use it for Krishna, then this material world will become a place of great happiness.
लेकिन अगर हम यहाँ पर भौतिक जगत में जो भी चीजें हमारे पास में भगवान की सेवा में उत्कर रहे हैं तो यही जगत हमारे लिए बहुत ही सुखमय स्थान बन जाएगा.
If you try to enjoy family life, to become the controller, to become the enjoyer, to exploit others, then you will end up in like a deep dark well. Your family life will be, and it will not give you any satisfaction to the heart.
तो अगर हम पारिवारिक जीवन को गृह जीवन को अपने भोग के लिए अपने दृष्टि के लिए उपयोग करेंगे तो यही हमारे लिए एक अंधकार में गहरे कुएं के समान और इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा.
But if you see your family members that here is my wife, my husband, my children, and Krishna has sent all of us together to serve each other, to eventually go back to Godhead, then with that vision, your family life will be like a safe boat which will carry you to the spiritual world.
लेकिन अगर इसी पारिवारिक जीवन को हम इस प्रकार से देखें कि भगवान ने हमको ये सभी साथ में मिलकर के हमको ये सहयोग दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए और साथ में हम मिलकर के कृष्ण मानवापित कार्यों में युक्त होते हैं तब यही पारिवारिक जीवन हमारे लिए एक अच्छा सुरक्षित नाव बन जाएगा.
If you try to enjoy the material body to get some sense gratification in a very selfish way, then eventually your material body will only give you suffering.
और अगर हम इस बहुत अपने शरीर को हम ये मान करके कि हमारे भोग के लिए है उसको अपने भोग के लिए उपयोग करना चाहेंगे तब ये हमको बहुत कष्ट प्रदान करेंगे.
But if you use this body, your intelligence, your energy, and everything that Krishna gives you with this body to try to serve Krishna, to serve others, then your body will help you to derive the greatest benefit.
लेकिन उसी शरीर को हम भगवान के सेवा में भक्तों की सेवा में उसको सहायता उसको योग करते हैं उपयोग करते हैं तब ये हमसे इससे हम बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
So in this first section of the 15th chapter, Krishna is telling us, don't try to enjoy the material world because then all of these things will happen. Rather, try to see that this material world is an opportunity for service in order to go back to the spiritual world. Then you will be happy.
तो इस पहले भाग में ये दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत और पारिवारिक जीवन और किस प्रकार से ये भौतिक जो हमारा शरीर है इसको हम भोग करने का प्रयास न करें उसके बजाय हम इसको किस प्रकार से भगवान की सेवा में करेंगे जिससे कि हम इस भौतिक जगत से निकल करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं.
सो आई विल जस्ट स्टॉप फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी वेदर एनीवन हैज एनी क्वेश्चन on this first section of the Bhagavad Gita, chapter 15, where Krishna is giving the analogy of the banyan tree, which describes the material world.
So, अभी प्रभु जी यहाँ पर विराम दे रहे हैं कुछ समय के लिए इस पहले भाग में 15वें अध्याय के जहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है उस अश्वत्थ वृक्ष का अगर किसी कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो हम अभी ले सकते हैं यहाँ पर.
If anyone has any question, then they can write in the chat or they can raise their hand or unmute themselves and then we can have some discussion.
अगर किसी कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं या आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं जिससे कि आपको अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं.
So yes, please, if there are anyone has any question, then we can try to discuss. I don't know, does anyone have any question?
कोई प्रश्न अगर है तो अभी आप पूछ सकते हैं प्रभु बहुत अच्छा अवसर है माता जी प्रभु जी.
Hare Krishna. Prabhuji, I can ask a question?
Yeah, yes, please go ahead.
Asimananda Prabhu, Hare Krishna.
Hare Krishna, Prabhuji, you told we were in the spiritual world. How we develop a desire of go back to material world? Because spiritual world, we will be serving Lord 24 hours. There is no time to think anything other than Lord's service.
They say this is on trying to find the answer to this question is one sure way in which ISKCON devotees give themselves a headache. It's a very difficult question to answer. Our acharyas have given different perspectives.
प्रश्न ये है प्रभु जी का कि प्रभु आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत से हम भौतिक जगत में जब इच्छा प्रकट करते हैं भोग करने की तो हमको यहाँ पर आना पड़ता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो हम लोग सतत रूप से भगवान की सेवा में युक्त हैं तो कहाँ पर ये समय है कि हम भौतिक इच्छा उत्पन्न करें तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है बहुत जटिल प्रश्न है और हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे
बट श्रील प्रभुपाद प्राइमरीली डिस्क्राइब्ड इट इन दिस वे
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से इस प्रकार से इसका उत्तर दिया
He explained that we were in the spiritual world, we were with Krishna, and we were satisfied, we were happy.
वो कहते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे, भगवान कृष्ण के साथ में थे और हम संतुष्ट थे.
However, at some point we developed a curiosity, an inquisitiveness, some desire.
और कुछ समय के पश्चात कुछ हमारे अंदर जिज्ञासा ऐसे जानने की जो कुछ थोड़ी सी जो इच्छा थी वो उत्पन्न हुई
So now Krishna does not force anyone to be in the spiritual world because without free will there is no love
और भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर बलपूर्वक उनको आध्यात्मिक जगत में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि अगर स्वेच्छा नहीं है तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा
Therefore Krishna allows us to come to the material world and experience life
और इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको इस भौतिक जगत में भी आने देना चाहते हैं जिससे कि हम इस जीवन का अनुभव कर सकें
Now to us it seems like we made such a big mistake and now we have so many years of suffering for one mistake
और अब ऐसा लगता है कि एक वो त्रुटि जो हमने की है वो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे ये इच्छा क्योंकि अब उसके लिए बहुत लंबे समय तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी
But it's explained that once we go back to the spiritual world It's as though we had never left.
लेकिन ऐसी व्याख्या की गई है कि जब हम जाएंगे वापस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा प्रतीत होगा कि हमने कभी उसको छोड़ के हम आए ही नहीं
So it's just like sometimes you have a very very bad dream and then when you are in the middle of the dream you are very very scared.
ये जैसे कि कोई ऐसा दुख स्वप्न देखने के समान है भयानक स्वप्न जिसके स्वप्न के बीच में ही आप बहुत भयभीत हो रहे हैं
But then when you wake up you realize oh I just fell asleep for a few minutes
लेकिन जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो आपको अनुभूति होती है कि अरे मैं तो बस सो गया था और सोने में देखा ऐसा कुछ सत्य नहीं है
And then sometimes after one or two hours you can't even remember your nightmare anymore
और कभी-कभी एक दो घंटे के बाद तो हमको याद भी नहीं रहता कि हमने रात में क्या स्वप्न देखा या क्या देखा मैंने
So to some extent, we will never be able to fully understand this, but Bhaktivinoda Thakur says, when there is a fire in the house, then the first and most important thing is get out of the house. And then you can ask the questions later about how the fire started.
तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं कि जब किसी घर में आग लग जाए तो पहले उस घर में से भागना चाहिए निकल करके और बाद में फिर हम सोच सकते हैं कि कैसे हम उस घर में थे आग कैसे लगी
So Prabhuji, I'll just share one thing on this. It's a little bit technical, but it will help you to understand why this question of how we fell from the spiritual world is inconceivable.
Thank you, Prabhu. तो अभी प्रभु जी हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय वस्तु पर दिखाएंगे कैसे ये समझना कि कैसे हम लोग ये अचिंत है समझना कि कैसे भगवान के धाम से हम लोग यहाँ पर गिरे
सॉरी वन सेकंड Okay, now you see this is a little bit technical, so stay with me, okay?
तो ये थोड़ा सा तकनीकी विषय वस्तु है, तो आप मेरे साथ समझने का प्रयास करिए.
This is the spiritual world and this is the material world.
तो आप देख सकते हैं एक लाइन खींची है, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत और नीचे भौतिक जगत.
Now, this line I'm drawing on the bottom is time.
और जो मैं नीचे एक रेखा बनाया हूं, ये समय की रेखा है, काल.
Now, in the material world, there are 14 planetary systems.
और भौतिक जगत में 14 लोक बताए गए हैं.
And the highest planetary system is Brahmaloka.
और सर्वोपरि जो लोक है वो ब्रह्मलोक है.
Now, what happens is as you go higher and higher in the material world, time is said to dilate.
और ऐसा बताया गया कि जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोकों में, हम देखते हैं कि जो समय है, समय का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है.
So one day in Brahmaloka is like thousands and thousands of years in the earth time.
कि जैसे ब्रह्मलोका का एक जो दिन है वो यहाँ के हजारों हजारों वर्षों तक होते हैं.
Now, as you go higher and higher and time gets smaller and smaller, when you come to the point of the spiritual world, then here there is no time.
तो जितना ही ऊपर की ओर जाते जाते हैं, समय कम होता जाता है, समय की जो प्रभाव है कम होते जाते हैं, और एक स्थान ऐसा आता है जहां पर कि समय का अपना कोई प्रभाव नहीं है.
Therefore, in the spiritual world, it said there is no time.
इसलिए कहा गया है कि भौतिक आध्यात्मिक जगत में समय का कोई भी महत्व नहीं है.
So sometimes people ask the question, did we fall from the spiritual world?
तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम भौतिक जगत से गिरे हैं, आध्यात्मिक जगत से गिरे हैं कि नहीं.
But it's an inconceivable question because when we come from the spiritual world down, we're coming from a place where there is no time. So it doesn't make any sense to say you fell from a place when there's no time there.
तो ये बड़ा ही अचिंत है समझना कि अगर कोई कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत से हम गिरे हैं, तो चूंकि वहां पर समय नहीं है, तो समय ही नहीं है, तो उसको समझना बहुत ही जटिल है कि कैसे गिरे हम.
And when you go back to the spiritual world, you're going back to a place where there is no time. So you don't go there at a certain point because there's no time there.
और जब जाते भी हैं वापस वहां पर, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि चूंकि वहां पर समय नहीं है, तो किस समय आप पहुंचे वो भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि वहां पर समय नहीं है.
So to some extent, this question will never make sense because we are dealing with two different realities.
तो देखा जाए तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का कोई तथ्य ही नहीं है, क्योंकि हम लोग दो अलग अलग वास्तविकताओं के साथ में हम ये व्यवहार कर रहे हैं.
On the chat, I am putting one article by Ravindra Swarup Prabhu. If you do a Google search, then he explains this.
तो प्रभु जी एक चैट बॉक्स में एक आर्टिकल डाल रहे हैं श्रीमान रविंद्र स्वरूप प्रभु जी का, और हम लोग गूगल में इसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं.
Is called conceiving the inconceivable.
तो इसका टाइटल जो इस प्रकार से है कि जो अचिंत है उसको सोचना, उसके बारे में सोचना.
So in this article, it will explain in more detail something I have tried to show you today.
और इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक ये बताया गया है जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा था.
Thank you, Ashimanand Krishna Prabhu. Hare Krishna.
Thank you, Prabhuji. Nicely explained, Prabhuji. It was very wonderful.
Are there any other questions anyone would like to ask?
और कोई प्रश्न किसी की जिज्ञासा है तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं. प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया है. I think you have made such a clear, very nice presentation.
No problem. No. So Prabhuji, I'm just wondering what to do. It's 10:05. And, you know, if I go now into the next bit, then it may go. What time do we finish?
Prabhu, next week, it depends on how much portion you have remaining in this section. If you want to go for next 10, 15 minutes, Prabhu, we are okay.
Okay, shall I explain? I'll explain the next section and then I'll finish. We finish by 10:30, yeah? Please. We finish in 25 minutes, yeah?
Okay, Prabhu.
That's okay?
Please.
All right.
Yes, Prabhu.
Okay, Prabhuji. Let me go back now then. So now Krishna has explained sorry, Prabhu, just give me 1 second. You can see this, Prabhu? It says home?
Yes, Prabhu.
You can see now. Okay. So now we have described the first section of the 15th chapter where Krishna is explaining this material world is not our true home. Now we will describe the second section of this chapter.
तो अभी हम लोगों ने इस अध्याय के पहले जो भाग था जिसमें बताया गया कि हमारा वास्तविक घर नहीं है ये जगत और अब हम लोग आगे वाले दूसरे वाले भाग में जा रहे हैं।
In this chapter, Krishna explains, "Mame vamsha jivaloke jivabhuta sanatana manashastendriyani prakritishtani karshati." That because the spirit soul, the jiva, is in ignorance, they are struggling in this material world, reincarnating with their mind and senses again and again, on and on.
तो यहाँ पर बताते हैं इस भाग में किस प्रकार से जो भगवान के अंश हैं जीव जो वो इतने अज्ञान में हैं कि अपने इंद्रियों और मन के साथ में पुनः पुनः बार बार यहाँ पर वो संघर्ष कर रहे हैं बार बार जन्म ले रहे हैं.
So here in the 8th and 9th verses, Krishna explains. This wonderful verse, Prabhuji, you can translate into Hindi.
तो यहाँ पर 8वें और 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीव जो है इस भौतिक जगत में वो अलग अलग विचारों को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जैसे कि वायु जो है वो गंध को लेकर के जाती है उसी प्रकार से वो प्रवेश कर रहे हैं और एक प्रकार का शरीर छोड़ते हैं और दूसरे प्रकार का शरीर धारण करते हैं और ये स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनके साथ में जैसे उनके अलग प्रकार के उनकी जो इंद्रियां हैं जैसे कि कान आंखें जीवा नासिका और उनकी त्वचा और उस प्रकार से उनका मन जो है फिर वो कार्य करता है और इसी प्रकार से वो अलग अलग इंद्रियों के विषय का भोग कर रहे हैं.
In English, there is a very famous saying, man proposes, God disposes.
तो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्यक्ति तो बहुत से विचार करते हैं लेकिन भगवान उनको वही देते हैं जो भगवान की इच्छा होती है.
If we have a material mentality, if we have material desires, if we have material thoughts at the end of our life, then Krishna will take all of those thoughts and desires and then create a new body for us in the material world where we can again attempt to fulfill those desires.
तो जब भौतिक इच्छाओं से युक्त भौतिक चेतना जब भौतिक भोग करने की जब इच्छा होती है मनुष्य के अंदर तो भगवान उसके जीवन के अंत में उनको लेकर के एक अलग प्रकार का शरीर जिसमें वो इच्छाएं पूर्ण हो सके उनको प्रदान करते हैं.
So this body that we have received is a result of our previous actions and desires.
तो ये शरीर जो हमने प्राप्त किया है ये हमारे पिछले जीवन के हमारी इच्छाएं और जो हमारे कर्म हैं उसका ही ये परिणाम है.
In the Bhagavatam, there is a very famous verse. Karmana devanetrena jantur deho papataye striya pravishta udaram pumshareta kanashraya. The soul is injected into the mother's womb through the agency of the father's semen.
तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक में बता रहे हैं कपिल मुनि किस प्रकार से स्त्रियों के उदर में पुरुष जो पति हैं उनके वीर कण के द्वारा उस जीव को वहां पर प्रवेश कराया जाता है उदर में.
So what decides which body where the soul goes next, that is according to the desires that one has had in the previous life, the karma or the activities and the reactions that they are carrying, and number three, any spiritual aspirations that they may have.
तो तीन चीजें बता रहे हैं प्रभु कि किस प्रकार से हम किस शरीर में जाएंगे, कैसे ये ज्ञात होता है, ये निर्भर करता है तीन चीजों पर कि क्या इच्छाएं हमने पिछले जन्म में प्रकट की थी, क्या हमने कर्म किए हैं और क्या हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा है.
For example, say someone has a desire in the end of their life to live in a big house.
जैसे उदाहरण स्वरूप पर देखा जाए किसी की इच्छा है पिछले जीवन में कि हम एक बड़े घर में रहें.
Now, if the person has a desire to live in a big house, but their karma is very low, their piety is very, very low, then in their next life, they may become a dog in the house, in a big house.
तो अगर उनकी इच्छा इस प्रकार से है कि बड़े घर में रहना, लेकिन उनके कर्म जो है वो बहुत, कर्म की जो प्रतिक्रिया है बहुत कम, न्यूनतम है वो, तब हो सकता है कि वो अगले जीवन में बड़े घर में एक कुत्ते का उनको जन्म मिल जाए.
If someone's desire is to live in a big house, but their karma, their piety is very, very good, then in their next life they may become a wealthy person who lives in a mansion.
और किसी की इच्छा इस प्रकार से है बड़े घर में रहने की और उनके कर्म भी जो है वो काफी अच्छे हैं, ऊपर है, तो हो सकता है कि वो अगले जीवन में एक बहुत ही धनी व्यक्ति के रूप में जन्म ले और ऐसे बड़े महल में रह सकते हैं.
But say for example someone has a desire to live in a big house, but actually they are practicing spiritual life, they also want to develop their Krishna consciousness, then in their next life Krishna may arrange for them to take birth in a big house like Bhaktivedanta Manor.
तो भी कह रहे हैं कि अगर किसी की ऐसी इच्छा हो कि मुझे बड़े घर में रहना है और उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी काफी अच्छी है, तब हो सकता है कि उनको फिर अगले जीवन में बहुत ही ऐसे अच्छे स्थान जैसे कि भक्तिवेदांत मैनर, ऐसे बड़े महल जैसे हैं, वहां पर उनको रहने का अवसर प्राप्त हो.
So in all situations, Krishna fulfills our desire. But he fulfills it in a way that is according to our karma and according to our spiritual desires.
तो हर एक स्थिति में भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे इच्छा और कर्म के ऊपर निर्भर है.
So now, sometimes what people try to do is they try to predict the future. What will happen in the future of my life?
तो कभी कभी लोग अपने भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है मेरे साथ में.
Therefore, they do things like astrology or Jyotish.
इसीलिए वो ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष के पास जाते हैं.
So this is actually a bona fide spiritual department of knowledge.
तो ये एक प्रामाणिक ज्ञान का एक प्रामाणिक विभाग है ये.
What astrology is doing is telling you how your karma will act out in this life.
तो वो क्या करते हैं, इस ज्योतिष के द्वारा बताते हैं कि आपका जो कर्म है इस जीवन में किस प्रकार से आपके साथ में उसका प्रतिक्रिया प्राप्त होगा.
So certain things can be predicted within our astrology.
और कई चीजें उसमें से जो है निश्चित रूप से कुछ चीजें जो है उसका वो भविष्यवाणी कर सकते हैं इस ज्योतिष ज्ञान के द्वारा.
And sometimes people can also find out where they were in previous lives.
और कभी-कभी वो यो भी ज्ञात कर सकते हैं कि पिछले जन्म में वो कहां पर थे, क्या थे.
In English they have something called past life regression.
तो इसको कहते हैं कि जो हमको पूर्ववर्ती जीवन है उसकी याददाश्त, उसकी बातें याद हैं.
Sometimes people can remember their previous life, their previous situations, who they were and where they lived and all of these kind of things.
और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने पूर्ववर्ती जीवन के बारे में जानते हैं कि कहां पर रहे वो, क्या करते थे, उनको ज्ञात है.
But the basic point that Krishna is giving now in this section of the 15th chapter is that we have been reincarnating again and again in this material world.
लेकिन जो एक मूलभूत तत्व यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, पंद्रह अध्याय में, कि बार बार हम लोग पुनः पुनः हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जा रहे हैं.
Now what Krishna explains is that in your next body, certain things will be determined by your karma.
और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगले जीवन में कुछ चीजें आपके कर्म के ऊपर निर्भर हैं.
Janma, Aishwarya, Shruta, Shri, Bhir, these four things are key reactions that we receive in this life according to our activities from previous life.
तो अपने पूर्ववर्ती जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको जो प्रतिक्रिया प्राप्त होती है जन्म में उसमें से जन्म ऐश्वर्य शुत और श्री ये चार चीजें हमें प्राप्त होती हैं.
So janma means the people that you are born, which family you are born into, what kind of people are around you, this is all determined by previous karma.
तो किस प्रकार के लोगों के साथ में रहेंगे, किस परिवार में जन्म होगा, तो ये हमारे जन्म के हिसाब से ये आधारित होता है.
How much wealth you have, how much money comes to you, how much fortune, good fortune you have, Aishwarya, this is all determined by previous karma.
कितना धन हमारे पास में होगा, कितना सौभाग्य भाग्य रहेगा हमारा, ये हमारे ऐश्वर्य ये निर्धारित करते हैं.
How much beauty you have, how much good health, how much strength you have in your body, this is determined from previous karma.
और पूर्ववर्ती कर्मों से कितना हमारा सुंदरता है, कितनी हमारी स्वास्थ्य हमारा कितना अच्छा है, ये सब उस पर निर्भर करता है.
And how much intelligence, how much ability one has, intellectual ability, this is all determined by karma.
और हमारी कितनी बुद्धि बौद्धिक क्षमता हमारी कितनी है, ये हमारे पूर्ववर्ती कर्मों से भी ये भी निर्धारित होता है.
So Queen Kunti in a very famous verse, she says, Janmeshwarya Shruti Shri Bhir Edama Namada Puman Nirvarhatya Vidatum Vetvam Kinchan Gocharam. Prabhuji, maybe you can just translate this verse in Hindi.
तो श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी कहती हैं कि ये जन्म ऐश्वर्य शुत्र शुभि जो है ये हमारे इसका मद अहंकार हो जाता है और इसकी वजह से हम भगवान के चरण कमलों को पाने में ये हमारे बाधा बन जाते हैं. लेकिन जो अकिंचन है, जिन्होंने इस सब कुछ को बिल्कुल त्याग दिया है, भगवान उनके द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं.
Because people are trying to increase their wealth, increase their beauty, increase their power and influence, and increase their material enjoyment in this world, therefore they are becoming more and more entangled in this material world.
तो चूंकि लोग अपनी पूरी शक्ति, पूरा बुद्धि, सब कुछ लगा रहे हैं इस अपने इस चार चीजों को सुधारने के लिए, उसको ठीक से करने के लिए, इसीलिए उस भौतिक जगत में वो बार बार उसमें जकड़े रहते हैं.
But what Krishna is saying and what Kunti is praying is that one must become a akinchan Vaishnav.
लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर क्या बोल रही हैं कि व्यक्ति को अकिंचन वैष्णव बनना चाहिए.
In other words, only when one is no longer looking for bhoga, enjoyment, and aishwarya, opulence, then only one will be able to engage in Krishna service with determination and escape the material world.
तो दूसरे शब्दों में जब ऐश्वर्य और भोग की प्रवृत्ति को त्याग करके जब वो भगवान की सेवा में युक्त होते हैं तभी वो ऊपर बहुत भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं.
Therefore Krishna says in the Gita, Bhogeshwarya prashaktanam taya parit chetasham vyavasayatmika buddhi samadho nuvidiyate. For one who is looking for bhoga, enjoyment, and aishwarya, opulence, the resolute determination for devotional service will never take place.
जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में कि किस प्रकार से जिन व्यक्ति के अंदर अभी भी ऐश्वर्य और भोग के प्रति अभी भी रुचि बनी हुई है तो उनके अंदर कभी भी भगवान के चरण कमलों के प्रति एक निष्ठ बुद्धि एक निष्ठ भक्ति नहीं आ सकती.
And so today we will conclude the first half of chapter 15.
तो आज हम लोग यहाँ पर जो 15वें अध्याय का पहला आधा भाग है वहां पर हम आज समाप्त करेंगे.
Firstly, Krishna explained that this material world is only a hotel, it's like a reflected banyan tree. And our true home is the spiritual world.
तो जैसे कि हमने सुना पहला भाग जो था कैसे ये भौतिक जगत जो है ये इस प्रकार के सराय के समान है और ये हमारा स्थाई स्थान नहीं है, स्थाई स्थान हमारा भगवान का धाम है.
And then later on, Krishna explained that because we have a material mentality, again and again, on and on, the soul is reincarnating in this material world, but not finding true happiness, struggling.
और दूसरी बात, चूंकि हम लोग भौतिक चेतना से युक्त हैं, तो इसी संसार में हम लोग बार बार पुनः पुनः नए नए जन्म लेकर के हम यहाँ पर आ रहे हैं, और लेकिन हम प्रयास जो कर रहे हैं आनंद पाने के लिए, उसमें हमें निराशा ही मिल रही है.
So basically, what Krishna has explained now is the problem that we are facing.
तो अभी हमने क्या सीखा आज के इसम की, जो हम लोग समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं संसार में.
And next week we will discuss the final two sections where Krishna explains that through surrender to Him, one can escape this material world.
और अगले सप्ताह में हम लोग आगे के दो भाग जो है वो अध्ययन करेंगे कि भगवान की शरण लेकर के किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से निस्तार पा सकते हैं.
And this is Purushottam Yoga, the yoga of the Supreme Person.
और यही पुरुषोत्तम योग है, भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान का योग.
So thank you very much. I tried to explain. I hope you are able to follow. And you know, if you remember this word home, H-O-M-E, then you will be able to remember everything in the 15th chapter of the Gita.
तो प्रभु कह रहे हैं कि मैंने प्रयास किया इसको बताने के लिए, आप मुझे आशा करता हूँ कि आपको याद रहेगा ये, और अगर आप स्मरण करें कि इस अध्याय का जो जो एक्रोनिम्स है वो होम है, H-O-M-E, तो आप पूरे अध्याय को आप सार रूप में समझ पाएंगे आप.
So we have, I think, 5 or 10 minutes. I'm happy to take any questions if anyone has any questions on anything we have discussed, or if there are any other points you would like to raise. I'm very happy. Yeah, you can raise your hand.
Raghupati
Pran Prabhu is, I think,
Yes. Raghupati Pran Prabhu ji,
aapko Krishna Prabhu ji,
Dandavat Pranam Prabhu ji.
जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा स्वाभाविक तौर से हमारा जो निवास स्थान है भगवान के धाम में है, लेकिन जो हमारा गलत जो इच्छा है, गलत इच्छा के कारण से हम यहाँ फेंक दिए गए इस भौतिक जगत में, तो यहाँ भगवान के कृपा से, वैष्णव वृंद और शिक्षा गुरु के कृपा से हमको ऐसा एक संघ मिला, रूपा जी का संघ, तो उस संघ में हम संघ भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो भी हम शिक्षा गुरु से सीखे तो उसके अनुसार से हम थोड़ा बहुत भगवान का सेवा भी करने का प्रयास कर रहे हैं और भक्तों का भी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी मेरा जो भौतिक इच्छा है वो हो ही जा रहा है, और भौतिक इच्छा हो ही नहीं रहा है, अपितु उसके लिए हम हाथ भी बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, तो हम कैसे प्रभु जी, मतलब इच्छा सुन तो हम हो नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा जो मतलब हो उपदेश जिससे हम ऐसे गलत इच्छा को हम छोड़ दें, और ज्यादा ज्यादा हम भगवान के और भक्तों का जो सेवा करने का इच्छा है वो हमारे अंदर जागृत हो प्रभु जी, इस पे कृपया अपना कृपा प्रदान करें प्रभु जी.
ओके प्रभु जी, सो प्रभु, द क्वेश्चन इज दैट you mentioned that how the jiva came from the spiritual world because of the material desire, and although after coming here we got such a wonderful association of Srila Prabhupada movement, and after coming in contact with our Shiksha and Diksha Guru, we have been given the process, so although we are following the process of bhakti yoga, but still we have those material, such a, some of the material desire, and not having the material desire, even we tried also to fulfill those desire, so how to come out of this mentality to even to have some endeavor for fulfilling our material desire? That's the question.
Yes. Thank you, Prabhuji. Very nice question. We have been in the material world for many, many lifetimes.
So Prabhuji ka uttar hai, wo pehle aapko dhanyavad kar rahe hain prashn ke liye, achhe prashn ke liye. Keh rahe hain ki hum log bahut bahut janmon se is bhautik jagat mein hain.
Therefore, the material desires have gone very, very deep within our hearts.
इसलिए भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय के बहुत ही गंभीर, बहुत अंदर अंतरंग तक वो स्थित है.
sometimes the children, they go with like markers or crayons, and then they write something on the wall.
Kabhi-kabhi dekhe, bachon ke haath mein kuch chalk hota hai, kuch aise, kuch marker hota hai, ja karke wo slate pe ya diwal pe likhte hain kuch.
So if they do that, they, you only have two choices.
तो अगर वो लिखते हैं तो आपके पास दो ही चयन करने का अवसर है.
One is you try to get some cloth and wipe it off.
एक तो है कि आप कुछ कपड़े लेकर के और उसको आप उसको मिटा दीजिए वहां पर जाकर के.
But most of the time if you try to do that, still some marks will remain.
क्योंकि ज्यादातर समय आप कुछ करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है.
So the only other option is you have to repaint the whole wall.
तो दूसरा जो चयन हमारे पास में क्या है कि पूरे दीवार को हम फिर से पेंट कर रहे
हैं. So therefore, in order to overcome our material desires, to clean them from our heart completely by our endeavor is very difficult.
तो इसीलिए अपने हृदय से इन भौतिक इच्छाओं को निकालना अपने स्वयं के प्रयास से ये बहुत ही कठिन है.
So what we need to do is focus more on all the positive activities of bhakti that will paint over all of the material desires.
Jai. To Prabhu ji keh rahe hain ki to kya karna hoga, jaise hum diwal ko paint kiye the waise hi bhakti ke is paint ke dwara khub jo bhakti mein ichhaen hain isko apne andar leke aaye to wo usi prakar se hai ki diwal ko paint karne jaise.
Prabhu ji, if I tell you don't think of a blue elephant, you will think of a blue elephant.
Kabhi kare ki agar main aapse kahu ki aap ek neele haathi ke bare mein mat sochiye, to jaise hi main kahunga waise hi aap neele haathi ke bare mein sochna shuru kar denge.
And if I tell you now you should not think about anything except the blue elephant, then you will think about all different things.
Aur agar main aapse kahu ki ab aapko neele haathi ke alawa aur kuch nahi sochna hai,
because manas chanchalam asthiram,
kyunki hamara man bahut chanchal aur asthir hai.
Therefore the only way is we have to become very inspired about shravanam, kirtanam, vishnu smaranam, pada sevanam, archanam, dasyam, all the angas of bhakti, this positive engagement in spiritual life and the inspiration of happiness that comes from practicing Krishna consciousness, immediately the material desires, you'll paint over them, they will disappear.
इसलिए हम लोग को बहुत ही गंभीरता से इस नवदा भक्ति के जो अंग हमको बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, भक्तों का संग, बहुत गंभीरता से इसको सतत रूप से ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इसके प्रयास से, इसके संग से ही, इनके ही सहायता से ये जैसे कि हमारी भौतिक इच्छाओं के ऊपर आध्यात्मिक इच्छाओं का पेंट हो जाएगा और तब जाकर के वो इच्छाएं बाहर नहीं आएंगी.
Therefore, raso varjam rasopyasya param drishtva nivartate. The only hope is if we get the higher taste.
तो इसीलिए एक ही आशा हमारे जीवन में है कि हमको उच्च स्वाद प्राप्त करना होगा.
Therefore, Srila Prabhupada, he didn't so much tell his disciples, don't do this, don't do this. He was more telling them all the positive things they should do.
इसलिए प्रभुपाद जी ने वो अपने अनुयायियों को बहुत ज्यादा शुरुआत में सब नहीं कहा कि तुम ये मत करो, वो मत करो. उन्होंने क्या किया, जो सकारात्मक चीजें जो करने के लिए थी वो उनको दिया कि इससे ये करो, ये करो, ये करो.
So let us focus on the positive and the negative will immediately disappear.
इसलिए जो सकारात्मक चीजें हैं उसके बारे में हम सोचें तो अपने आप जो नकारात्मक चीजें हैं वो अपने आप निकल जाएंगे.
I hope that's okay.
तो ये करें कि मैं आशा करता हूं कि आपके उत्तर में.
जी जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका.
रघुपति प्राण प्रभु, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण.
थैंक यू प्रभु.
Prabhuji, it's 10:30. I'm under your guidance. If we want to stop there, we can continue on later.
So much, Prabhu. Prabhu, we are very, very grateful to you, Prabhu, for such a wonderful, very, very innovative way of presentation. And also the way you recited the shloka was so sweet, Prabhu. It was so inspiring to even learn to recite the shlokas, the way you were reciting. And we are very, very fortunate, Prabhu, to have with you and to hear from you. And we look forward for the next week as well. And we learned so many things. Prabhu, earlier we used to think that this chapter is, 15 chapters, especially in Bhagavad Gita, is quite difficult to understand, even the analogy of this banyan tree. But you simplified in such a wonderful way that it was so wonderful to grasp, to understand it, and to correlate it, actually, to correlate it with our practices. So we are very grateful to you, Prabhu. Thank you so much.
Thank you, Prabhu, for your translation. Thank you for tolerating me. And thank you to all the Vaishnavas for giving me an opportunity to share something with you.
And Prabhu,
I hope to see you all next week.
In Kanyadesh, we have your books, Prabhu, that compact Bhagavad Gita, compact Bhagavatam and Chaitanya Charitamritam. And also we visit tatwa.co.uk also very often. So thank you so much for giving so much material, Prabhu, for all of us. So all together, we thank Prabhuji now. We'll express our gratitude by chanting one time Hare Krishna Maha Mantra and Vaishnava Pranam Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.